ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। आप में से कौन कौन हर रविवार को आते हो? और आप में से यहां कोई पब्लिक को चुप रहेगा? आप में से कौन कौन आज पहली बार आ रहे हो इस कौन के रविवार के कार्यक्रम में? तो जो भक्त पहली बार आ रहे हैं, आप भक्तों का खास हार्दिक स्वागत स्वागत। ये कार्यक्रम हर रविवार किया जाता है इस कौन के हर केंद्र में, और इसका मूल उद्देश्य है कि आप लोगों को एक मौका दिया जाए जिसके द्वारा भगवान के शरणागत हो सको। तो जैसे आप जानते हो, इस महीने में एक बड़ा प्रसिद्ध दिन है। कौन सा प्रसिद्ध दिन है? वैसे तो रोज ही प्रसिद्ध दिन है भगवान की सेवा में, पर एक खास दिन है जो कि बड़ा प्रसिद्ध है, गीता जयंती का। और वो कब है? 20 तारीख को। तो हम आरंभ में गीता के एक प्रसिद्ध 62 श्लोक 18वें अध्याय का पढ़ेंगे, और बाद में गीता जयंती की चर्चा भी करेंगे, और किस प्रकार आप सब जुड़ सकते हो इस शुभ कार्य में अपने आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए। तो आज हम भागवत गीता के 18वें अध्याय का 62 श्लोक पढ़कर आपको सुनाएंगे। इस श्लोक की संस्कृत का श्लोक हमने बोर्ड में भी लिखा हुआ है, तो अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। जो भक्त हिंदी नहीं जानते, ओके, सो दोज हू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी कैन सिट इन द कॉर्नर देयर एंड दिस एफएम Translation facility. Okay? So Madhu Mangal, you sit in the corner there, they'll give you an FM set. Harishandra. Okay? Jin bhaktong ka angreji nahi samaj aati, those who don't understand Hindi, I'm sorry, they can have an FM set and you can hear simultaneous translation in English. ताम बोर्ड कहाँ गया? अच्छा, ताम एवं शरणं गच्छ सर्वा भवेना भारता तां प्रसादं परं शांतिं स्थानं प्रपाशसि शाश्वतं तमेव शरणं गच्छ सर्वभवेन भारत तत्प्रसादत् परं शान्तिं स्थानं प्रपाशसि शाश्वतं तमेव शरणं गच्छ सर्वभवेन भारत तत्प्रसादत् परं शान्तिं स्थानं प्रपश्यसि शाश्वतं तमेव शरणं गच्छ सर्वभवेन भारत तत्प्रसादत् परं शान्तिं स्थानं प्रपश्यसि शाश्वतं। शब्दार्थ और अनुवाद।
तम उसकी एव निश्चय ही शरणम गच्छ, शरण में जाओ, सर्वभावेन सभी प्रकार से, भारत हे भरतपुत्र, तत्प्रसादात उसकी कृपा से, पराम दिव्य शांतिम शांति को, स्थानम धाम को प्राप्स्यसि प्राप्त करोगे, शाश्वतम शाश्वत। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए, हे भारत सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की, अतएव जीव को चाहिए कि प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान की शरण ले, इससे इस संसार के समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसी शरण पाने से मनुष्य न केवल इस जीवन के सारे कष्टों से छुटकारा पा सकेगा, अपितु अंत में वह परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद 1:22 दिव्य जगत तद विष्णु परमम पदम के रूप में वर्णित है। क्योंकि सारी सृष्टि ईश्वर का राज्य है, अतएव इसकी प्रत्येक भौतिक वस्तु वास्तव में आध्यात्मिक है, लेकिन परमम पदम विशेषतया नित्य धाम को बताता है जो आध्यात्मिक आकाश या वैकुंठ कहलाता है। भगवद गीता के 15वें अध्याय में कहा गया है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं। अतः इस कथन कि मनुष्य अंतः स्थित परमात्मा की शरण ले का अर्थ है कि वह भगवान कृष्ण की शरण ले। कृष्ण को पहले ही अर्जुन ने परम स्वीकार कर लिया है, 10वें अध्याय में उन्हें परम ब्रह्म है परम धाम के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। अर्जुन ने कृष्ण को भगवान तथा समस्त जीवों के परम धाम के रूप में स्वीकार कर रखा है, इसलिए नहीं कि उसका निजी अनुभव है, वरन इसलिए भी कि नारद असित देवल व्यास जैसे महापुरुष इसके प्रमाण हैं।
ओम ज्ञानमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाक्या चक्षुर्मिलितानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितां येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं सग्रजतं सहगना रघुनाथन्वितं तं सजीवं सद्वैतं सुवधूतं प्रियजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कंता राधा कंता नमोस्तुते तप्ता कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिपे वंचा कल्पतरुभयवचा पतितानां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव हरे कृष्ण त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभवेन भारत तत्प्रसादत् परम शांतिम स्थानं प्रपश्यसि शाश्वतम्।
अब मेरे बाद इस श्लोक के अनुवाद को दोहराइए कृपा करके। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो ये श्लोक का उच्चारण परम भगवान कर रहे हैं, और जो भागवत गीता का संदेश है ये सनातन संदेश है। भागवत गीता के चौथे अध्याय में भगवान इस ज्ञान के इतिहास का वर्णन करते हैं, और भगवान ने कहा कि ये ज्ञान उन्होंने दिया था सबसे पहले सूर्य के देवता विवस्वान को, जो माना जाता है करोड़ों साल पूर्व। फिर ये ज्ञान पहुंचा था मानवताओं के पिता मनु को, फिर महाज इक्ष्वाकु को, और फिर समय के साथ ये ज्ञान खो गया था, और भगवान ने फिर ये ज्ञान दिया किसे? अर्जुन को। वो दिन आप बनाओगे गीता जयंती के समय। और भगवान ने ज्ञान अर्जुन को क्यों दिया? क्योंकि उनमें दो गुण थे, भगवान के भक्त थे और मित्र। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम इस ज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ पाओगे। भागवत गीता का संदेश यह है कि हमें परम भगवान के शरणागत होना चाहिए। अनेक व्यक्ति ने गीता का अनुवाद किया है, और आप देखते हो कई बार अनुवादकों ने अपने भाव अर्थ को जोड़ा है, पर गीता का असली संदेश क्या है? सर्वधर्मां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्व पापे भयो मोक्षयामि मात्सा, कि सब धर्म को छोड़कर किसकी शरण में आओ? भगवान कह रहे मेरी शरण में आओ। ये विचार कि हमें परम भगवान के शरणागत होना चाहिए, ये विचार बार बार प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसे कि आज के श्लोक में परम भगवान कह रहे हैं सब प्रकार से उसी की शरण में आओ, मतलब कि उसी का अर्थ है पर सब प्रकार से मेरी शरण में आओ। क्योंकि भागवत गीता में स्थापित किया जाता है कि परम भगवान कौन है, तो बार बार इस विषय पर बल दिया जा रहा है कि हमें सब प्रकार से, सब प्रकार का क्या अर्थ यहां कहा जा रहा है, सब प्रकार से भगवान की शरण में आओ। तो सब प्रकार के का अर्थ है कि हर रूप से। उदाहरण के लिए हमारे अनेक साधन हैं जिनके द्वारा आप भगवान को भूल सकते हो, और जिनके द्वारा भगवान का स्मरण भी कर सकते हो। उदाहरण के लिए भगवान ने हमें यह देह दिया है, मन दिया है, वाणी दी है, शरीर के अनेक अंग इंद्रियां दिए हैं, इनका आप चाहो तो सदुपयोग कर सकते हो, और चाहो तो दुरुपयोग कर सकते हो। जैसे कि आज आप सबने निर्णय किया हमने भगवान कृष्ण के मंदिर में जाना है, भगवान के विग्रह का दर्शन लेना है, भगवान को प्रणाम करना है, भगवान की आरती में उपस्थित होना है, भगवान का संदेश ग्रहण करना है और प्रसाद भी ग्रहण करना है। अगर आप ये नहीं करते, आपके पास छूट थी, आप इसी समय का उपयोग कर सकते थे किसी गलत कार्य के लिए भी। जैसे कि इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं सर्वस्य चार्म हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपहानम चा। प्रभुपाद कह रहे हैं कि गीता में एक श्लोक है जहां की भगवान कहते हैं कि मैं हर के हृदय में विराजमान हूं, और मैं स्मरण का कारण बनता हूं, और अपोहानम भूलने का कारण भी मैं ही बनता हूं। तो भगवान जो परमात्मा के रूप में एक अंतर्यामी है, हमारी सब इच्छाओं को सूंघ लेते हैं और सूंघ कर पहचान लेते हैं और उसी के अनुसार हमें मार्गदर्शन देते हैं। जो कि भगवान के शरणागत होना चाहें तो उन्हें बुद्धि देते हैं, किसी के माध्यम से उन्हें भक्तों की संगत मिले। कहा जाता है कि भक्तों की संगत हमें दो माध्यम से प्राप्त होती है, एक है भक्त भागवत श्री साधु, दूसरा है ग्रंथ भागवत। जैसे कि हम ग्रंथों को बांटते हैं, किस भाव से? इस भाव से कि ग्रंथों के अध्ययन के द्वारा लोगों के हृदय में आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न होगी। तो परम भगवान चाहते हैं कि हम सब उनके शरणागत हों। भगवद गीता में अनेक प्रकार के योगों का वर्णन है, ज्ञान योग, संख योग, ज्ञान योग, संख योग, कर्म योग। परंत में भगवान का निर्णय क्या है कि भक्ति योग ही एक साधन है जिसके द्वारा तुम मुझे समझ सकते हो और पहचान सकते हो। और भक्ति योग का सरल भाषा में अर्थ यह है कि आप मन बुद्धि इंद्रियों का उपयोग कर रहे हो भगवान की सेवा में। भागवत में नारद मुनि जी कहते हैं कि जब आप कार्य भगवान के आदेश के अनुसार करते हो भगवान की प्रशंसा के लिए, तो उसे हम कहते हैं भक्ति योग। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि हमें सब प्रकार से उनकी शरण में आना चाहिए। तो आप कहोगे हम भगवान के शरण में क्यों आए, हम हमारी स्वतंत्रता रखना चाहते हैं। पर कहा जाता है संतों के द्वारा हमारे पास अनेक उपाय नहीं है, या भगवान की शरण में आओ या माया की शरण में रहो। माया की शरण में रहोगे तो एक प्रकार का परिणाम भुगतना पड़ेगा, और परम भगवान की शरण में आओगे तो दूसरे प्रकार का परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो यहां कहा जा रहा है कि भगवान की शरण में आओ। भगवान की शरण में आने के लिए साधु संगत का बड़ा गहरा प्रभाव रहता है। जैसे कि साधारण भाषा में कहते हैं कि हम व्यक्ति को पहचानते हैं उसकी संगत के द्वारा, है ना, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो उसी प्रकार अगर आप लोग ये निर्णय करो कि हमें साधुओं की संगत प्राप्त करनी है, तो आवश्यक ही ये ध्यान रहेगा कि जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि हमें साधु संगत का लाभ उठाना चाहिए। और साधु की क्या पहचान है? साधु की पहचान उसके वस्त्रों के द्वारा नहीं, साधु की पहचान है उसकी वाणी के द्वारा, उसके आचरण के द्वारा। क्या उसका आचरण शास्त्र पर आधारित है या विपरीत, और क्या वो उपदेश दे रहा है शास्त्र पर निर्भर है या मनमानी उपदेश दे रहा है। जैसे आज के वातावरण में आप देखते हो कि अनेक व्यक्ति दावा कर रहे हैं कि वो भगवान का संदेश दे रहे हैं, पर ध्यान से देखो तो देखोगे, अजमाओगे कि बहुत कम शास्त्र पर आधारित शिक्षा दे रहे हैं। शास्त्र का अर्थ है भगवान की वाणी, और इस वाणी में कोई अपूर्णता नहीं, कोई दोष नहीं। उदाहरण के लिए इस समय हम भगवद गीता की चर्चा कर रहे हैं, जैसे हमने आपको कहा था थोड़े समय पहले, ये भगवद गीता का उपदेश की चर्चा या वर्णन करोड़ों सालों से हो रहा है। जब भी आप बार बार क्यों पढ़ते हो, लोग क्यों सुन रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई दोष नहीं, कोई अपूर्णता नहीं। हमारे देश का यह दुर्भाग्य है कि हम इस गीता और वैदिक साहित्य की महिमा को नहीं पहचान पाते। कल हम अखबार में पढ़ रहे थे, हम थे यमुनानगर या कुरुक्षेत्र में, एक प्रसिद्ध राजनीतिक नेता भारत का कह रहा है, कल परसों का उसने, कि भगवान राम प्रकट ही नहीं हुए थे, ये तो कवि कवियों की कल्पना है। उससे पहले एक और प्रसिद्ध मंत्री ने कहा, भगवान राम का क्या प्रमाण है, ये तो कवियों की कल्पना है। अंग्रेजों ने अपने सरकार राज्य के समय ऐसे शब्द कभी नहीं कहे, वो जरा होशियार थे। पर आज ये स्थिति है कि वो कह रहे हैं भगवान राम कहां थे, और अगर ये कह रहे हैं आज तो कल ये भी उम्मीद कर सकते हो कहेंगे भगवान कृष्ण भी कहां थे, ये तो पंडितों की कल्पना है। तो ये है हमारा दुर्भाग्य। अगर किसी और देश या वातावरण में कोई कहता कि अल्लाह नहीं थे, क्या प्रमाण है या क्राइस्ट, तो आप कुछ और रूप ही देखते। तो आज स्थिति यह है कि हम गीता के महत्व, गीता की महिमा को ठीक रूप से नहीं समझ पा रहे। पर गीता का जो संदेश है ये पूरे मानव समाज के लिए है। उदाहरण के लिए इस भगवद गीता यात्रा रूप का अनुवाद विश्व की 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय भाषा में हो चुका है। उस सारे विश्व में लोग गीता का अध्ययन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गीता के द्वारा आपको असली ज्ञान प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए आज के वातावरण में लोग इच्छुक हैं आर्थिक उन्नति के लिए, तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं 3rd अध्याय में कि अन्न की प्राप्ति होती है वर्षा के कारण। वर्षा की प्राप्ति होती है जब आप यज्ञ करोगे या धर्म का पालन करोगे। तो अगर आपको आर्थिक लाभ भी चाहिए, भगवान कृष्ण के शरणागत हो, गीता के संदेश का अध्ययन करो। भगवान 7th अध्याय में कहते हैं 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी शरण में आते हैं, 4 श्रेणी के व्यक्ति, 3 हैं साकाम भाव से, 1 है निष्काम भाव से। साकाम भाव से कौन आता है, जिसको धन चाहिए तो कम से कम वो ये तो सोचता है मुझे भगवान कृष्ण के शरण लेने दो। दूसरा जो जिज्ञासु है, तीसरा जो रोगी पीड़ित है, ये 3 व्यक्ति आते हैं भगवान के शरण में प्रसाकाम भाव से। भगवान कहते चलो मेरी शरण में तो आ रहे हैं। और 4th श्रेणी का व्यक्ति आता है निष्काम भाव से, ज्ञान पर आधारित, वो समझता है कि भगवान के शरणागत होना मेरा असली लक्ष्य है। तो अगर हमें आर्थिक सुख भी चाहिए, भगवान क्या कहते हैं, मेरी शरण में आओ। तो इस श्लोक में भगवान हमें एक बार फिर से, वैसे तो जैसे हमने कहा कई बार यही भाव गीता में प्रस्तुत हो चुका है, और आप ये भी पूछ सकते हो क्या कारण है यह भाव बार बार प्रस्तुत किया जा रहा है। वास्तविकता यह है कि हम हैं पुराने मानना ढीठ, हम इस एक बार सुनने से हम स्वीकार नहीं कर पाते। इसलिए भगवान बार बार अनेक रूपों से हमें वो ही महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं, और इसलिए कहा गया है कि हमें बार बार ये संदेश को सुनना चाहिए, तो ही इसका प्रभाव रहेगा। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने तो ये आदेश दिया था कि हमें गीता और भागवत का अध्ययन नियमित रूप से रोज करना चाहिए। और साथ में हरि नाम का उच्चारण। और महाप्रभु ने कहा कि अगर आप हरि नाम के साथ गीता भागवत का अध्ययन करोगे रोज, तो तुम सदा मेरे साथ रहोगे और मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब भगवान आगे इस श्लोक में पहले तो ये कह रहे हैं कि किसी न किसी रूप से हमें परम भगवान की शरण में आना चाहिए। आगे भगवान ये कह रहे हैं इस श्लोक में, अगर तुम भगवान के शरणागत हो गए तो फिर उनकी कृपा से तुम्हें परम शांति भी प्राप्त होगी। किसकी कृपा से? परम भगवान की कृपा से परम शांति प्राप्त होगी। ध्यान से देखा जाए विश्व समाज में, हमारे मन में, सब जगह क्या हम अनुभव करते हैं? अशांति है। अगर आपसे पूछा जाए आपका मन शांत है, सच बोलिए, तो लगभग 100% लोग कहेंगे नहीं, हम अशांत हैं। एक बड़े प्रसिद्ध भक्त हैं गोविंद दास खाविराज, उन्होंने एक प्रार्थना में कहा है, बाजा हरे मनाशी नंद नंदना अभय चरण रविंद रे। हे मेरा मन, तुम बेचैन हो, अशांत हो, चिंता से भरे हुए हो, पर अगर तुम चिंता से रहित होना चाहते हो तो क्या है उपाय? आपको महाराज नंद के पुत्र की शरण स्वीकार करनी चाहिए। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि उनकी कृपा से अगर तुम भगवान के शरणागत होगे सब प्रकार से, तो फिर उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी और फिर उनकी कृपा के माध्यम से आप क्या प्राप्त करोगे? आपको परम शांति प्राप्त होगी। तो आप पूछोगे, आप पूछ सकते हो कि भगवान की कृपा क्या सब व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होती? तो उत्तर यह है, भगवान की कृपा के अधिकार हम सबको है। और भगवान गीता में ये कहते हैं, ये यथामम प्रपद्यन्ते, जितनी मात्रा में कोई मेरी शरण में आएगा उतनी मात्रा में ही मैं उसे बुद्धि दूंगा मुझे समझने के लिए। आप भगवान के शरणागत 10% होना चाहते हो तो आपको भगवान की कृपा भी उसी मात्रा में प्राप्त होगी। भगवान को समझने के लिए हमें प्रयास करना है और साथ में फिर उनकी कृपा प्राप्त होती है। पिछला महीना था कार्तिक का महीना, और कार्तिक के महीने में हम रोज भगवान के दामोदर लीला का गुणगान करते हैं एक प्रार्थना के माध्यम से जिसका नाम है दामोदराष्टका। तो इस दामोदर लीला में आपने अनुभव किया होगा कि जब यशोदा माता अपने बेटे को रस्सी से बांधने का प्रयास कर रही थी और उन्होंने अनेक रस्सियों को साथ जोड़ दिया था, तो सब जोड़ने के पश्चात भी ये अनुभव किया कि ये रस्सियां जो है कितनी उंगली छोटी थी? दो। तो ये दो उंगली छोटी का भाव क्या है? हमारे महान आचार्यों ने कहा है कि एक उंगली का भाव यह है कि हमें प्रयास करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा अगर हम परम भगवान को समझना चाहते हैं। और दूसरी उंगली का आप प्रयास करोगे तो फिर भगवान की कृपा प्राप्त होगी जिसके माध्यम से अपरम भगवान को समझ पाओगे। जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं, गॉड हेल्प्स दोज़ हू हेल्प देमसेल्फ्स, भगवान उनका सहयोग करते हैं जो स्वयं प्रयास करते हैं, है कि नहीं? भगवान ने अर्जुन से ये नहीं कहा तुम यहां बैठे रहो, उन्होंने कहा तुम इस युद्ध में लड़ो। तो अगर हम इस श्लोक के संदेश का पालन करें, अगर हम सब प्रकार से जैसे भगवान कह रहे हैं उनकी शरण में आए, तो आवश्यक ही बिना शंका के आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी। और जब आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी तो फिर आपको परम शांति भी प्राप्त होगी। हम सोचते हैं कि कोई भौतिक सुविधा के द्वारा हम शांति प्राप्त कर लेंगे। अनेक व्यक्ति सोचते हैं अगर हम धन कमा लें तो इसके द्वारा मन की शांति प्राप्त होगी, पर एक भारी भूल है। अगर आपको असली शांति चाहिए तो एक ही उपाय है, और वो उपाय क्या है? तन मन धन से भगवान की सेवा में जुड़ना। जैसे कि एक छोटा बच्चा अगर माता और पिता के साथ हो, अगर उसने माता पिता की उंगली पकड़ी है तो भयंकर स्थिति में भी वो घबराता नहीं, नहीं तो थोड़ी सी आवाज में वो घबरा जाएगा। तो उसी प्रकार यहां कहा जा रहा है कि अगर आपको परम शांति चाहिए तो हमें सब प्रकार से परम भगवान के शरणागत होना चाहिए। अभी परम भगवान के शरणागत होने का ये अर्थ नहीं कि आप भौतिक समाज में नहीं रह सकते। आप सोच रहे होंगे कि स्वामी जी तो कह रहे हैं कि हम घर छोड़ दें, धंधा छोड़ दें, घर वालों को छोड़ दें और सब आकर मंदिर में रह जाएं। हाँ नहीं, कृष्ण भक्ति का पालन हर स्थिति में हो सकता है। ब्रह्मचारी भी कर सकते हैं और गृहस्थ भी कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी ने एक गृहस्थ भक्त था जिनका नाम था खुरमा, उन्हें क्या कहा? एक खुरमा ब्राह्मण गृहस्थ था जिनके पत्नी थी बच्चे थे, और उनकी इच्छा थी कि वो महाप्रभु जी के साथ यात्रा करे। महाप्रभु ने कहा कि मेरे साथ यात्रा करने के बजाय तुम इन नियमों का पालन करो, और अगर तुम इन नियमों का पालन करोगे तो तुम सदा मेरे साथ रहोगे और मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो गृहस्थ आश्रम में नौकरी करते हुए, धंधा करते हुए, घर की देखभाल करते हुए, पढ़ाई करते हुए भी आप भगवान के शरणागत हो सकते हो। ये कोई असंभव कार्य नहीं है। और अगर आप भगवान के शरणागत नहीं होते, अगर आप उनकी शिक्षा को स्वीकार नहीं करोगे, तो दूसरा उपाय क्या है? आपको भटकते रहना पड़ेगा भौतिक संसार में। और आप देख सकते हो कि भौतिक संसार में क्या है? खष्ट खष्ट। आगे भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में कि तुम भगवान की कृपा प्राप्त करोगे, परम शांति प्राप्त करोगे और परम नित्य धाम को भी प्राप्त करोगे। किसको प्राप्त करोगे? परम नित्य धाम। तो इस विषय में बहुत कम लोगों को सूचना है। अक्सर हम सोचते हैं कि जो ज्ञान हमें हमारे विज्ञानी दे रहे हैं अनेक लोगों के बारे में, वो ही है ज्ञान। पर वैदिक साहित्य के अनुसार इन कुंथक जगत के अलावा, कुंद जगत के पार एक और स्थान है जिसे परम नित्य धाम या वैकुंठ धाम कहा जाता है। और यह पृथ्वी और अनेक लोग जिनके विषय में अभिज्ञानियों द्वारा ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, ये है कुंथा जगत। और जो भगवान का परम नित्य धाम है उसका नाम क्या है? वैकुंठ। तो वैकुंठ और कुंथा में अंतर क्या है? अंतर यह है कि कुंथा जगत में केवल कष्ट ही कष्ट है, क्लेश ही क्लेश, और वैकुंठा में कोई कष्ट नहीं, कोई क्लेश नहीं, केवल असली आनंद ही आनंद। कहां जाता है, वहां के पुरुष लाखों गुना ज्यादा खूबसूरत है इस पृथ्वी के पुरुषों से, वहां की स्त्रियां लाखों गुना ज्यादा खूबसूरत है, पर दोनों का भाव क्या है, कृष्णा की सेवा। तो ये परम नित्य धाम हम सब का असली निवास का स्थान है। कई लोग क्रिश्चियन लोग इसे कहते हैं हेवन, दो अलग अलग लोग अलग रूप से इसका वर्णन करते हैं, पर वैदिक साहित्य में और इस श्लोक में कहा जाता है परम नित्य धाम, जहां की किसी प्रकार का क्लेश नहीं। तो परम भगवान हमें निमंत्रण दे रहे हैं अपनी वाणी के द्वारा, अपने प्रतिनिधियों के द्वारा, कि त्यागो इस क्लेश के स्थान को और उनके शरणागत होने हो लेकर उनके शरणागत होकर नित्य धाम पहुंचने की तैयारी करो। जैसे कि आपने अगर विदेश में जाना हो अमेरिका, तो आपको पासपोर्ट भी बनाना पड़ता है, धन इकट्ठा करना पड़ता है, टिकट लेनी पड़ती है, वीजा लेना पड़ता है, रिजर्वेशन लेना पड़ता है, फिर आप अमेरिका पहुंच सकते हो, है कि नहीं। तो इसी प्रकार भगवान के परम नित्य धाम में पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा। और इसका साधन क्या है, वो उपदेश हमें इस श्लोक में दिया जा रहा है, वो उपदेश हमें वैदिक साहित्य में दिया जा रहा है। और कहा, आप लोग मोबाइल फोन बंद करोगे कृपा करके, हाय वो मंदिर के अंदर मोबाइल फोन में कृपा करके बात नहीं करो। तो भगवान के नित्य धाम में पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो भगवत गीता का मूल संदेश यह है कि हमें किसी न किसी रूप से परम भगवान के शरणागत हो जाना चाहिए। इसी 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, मन मन अमाव मद भक्त मद याजी मन निमुस्करु मां में वाचित सत्यम ते प्रति जने प्रियोषि में, कि मेरा भक्त बनो, मेरी उपासना करो, मेरा चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो। भगवान क्या कहते हैं, बिना शंका के तुम कहां आओगे, मेरे धाम में आओगे। तो हमें भगवत गीता का अध्ययन नियमित रूप से रोज करना चाहिए। आप अखबार पढ़ते हो, टीवी देखते हो, जानना चाहते हो विश्व में क्या बीत रही है, क्या बीत रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा हो तो आप एक मिनट भी टीवी से जुदा नहीं होना चाहते, है ना। आप जानना चाहते हो हर मिनट क्या हो रहा है, सच बात। पर भगवान का क्या संदेश है, दुर्भाग्य की बात क्या है, उसमें हम इतनी रुचि नहीं लेते। हमारे गुरु जी की इच्छा थी, गुरु जी ने गांधी जी को भी पत्र लिखा था स्वतंत्रता के पश्चात कि गीता का संदेश पाठशालाओं में देना चाहिए, गीता का संदेश हर व्यक्ति को ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो गीता, जैसे मैंने कहा था, थोड़े दिनों में ही आप गीता जयंती बनाओगे और गीता जयंती के उपलक्ष हम भक्तों को ये निर्णय करना चाहिए कि हम बड़े ध्यान से गीता को पढ़ेंगे और साथ में इस संदेश का पालन भी करेंगे। केवल पढ़ना और पालन नहीं करना भी ठीक नहीं है। मुझे कई संस्कृत पाठशाला के विद्यार्थी मिले हैं जिन्होंने लगभग पूरी गीता को कंठस्थ किया, पर जब उनका आचरण देखा जाए तो गीता के शिक्षा के बिल्कुल विरोध का दिखता है। वह हमें इस संदेश को हमारे चरित्र में उतारना चाहिए और गीता का जो संदेश है उसका हर व्यक्ति लाभ उठा सकता है। हम बीजा प्रदा पिता, भगवान कह रहे हैं ये जो भगवत गीता का संदेश है सबके लिए है, क्योंकि मैं सब योनियों का पिता हूं। तो आप सब भक्तों से एक खास विनती है, वैसे तो इस्कॉन के मंदिरों में रोज सुबह भागवत का अध्ययन किया जाता है, शाम के समय गीता का अध्ययन किया जाता है। जो भक्त मंदिर आ सकते हैं वो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, गीता सुन सकते हो, गीता भागवत सुन सकते हो। पर अनेक भक्त इसका लाभ नहीं उठा सकते, क्योंकि आपने नौकरी करनी है, धंधा करना है, व्यापार करना है, तो आप क्या कर सकते हो? आप घर में पढ़ सकते हो। ये नियम बनाइए कि हमने रोज एक श्लोक, ऐसे तो स्टार टीवी में इस्कॉन का आत्मा का कार्यक्रम भी आता है, जिसमें आप ऐसे कौन 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 ये आत्मा प्रोग्राम को टीवी में रोज देखते हो? अच्छा, तो ये प्रोग्राम 6-7 सालों से आ रहा है, तो टीवी में भी आप देख सकते हो। पर टीवी के अलावा अगर आप रोज एक श्लोक को पढ़ो और साथ में तात्पर्य व्याख्या को भी पढ़ो और उस पर विचार करो, और अगर आपके अनेक प्रश्न हो, तो अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई, तो आप रविवार को आकर हमारे जीता प्रभु से उन प्रश्नों को उत्तर प्राप्त कर सकते हो। अगर आप रोज 1-2 श्लोक पढ़ो तो आपका दिव्य ज्ञान जो है बढ़ेगा और आपकी भगवान की कृपा प्राप्त होगी। चैतन्य चतुर्मृत में आप कथा पढ़ते हो कि एक समय एक ब्राह्मण था जिसको उसके गुरु ने आदेश दिया था रोज गीता पढ़ो पूरा 18 अध्याय। तो ये ब्राह्मण अनपढ़ था, पर जब भी उसने गुरु के आदेश का पालन करने का प्रयास किया, रोज एक स्थान में बैठकर 18 अध्यायों का उच्चारण करता था, क्योंकि वो अनपढ़ था, कई श्लोकों का उच्चारण ठीक होता था, कईयों का गलत, और कई श्लोकों का अर्थ भी उसे समझ नहीं आता था। जब भी नियमित रूप से वो गुरु के आदेश का पालन कर रहा था और जो पड़ोस के लोग हैं वो उस पर हंसते थे। एक कारण हंस रहे थे क्योंकि वो श्लोकों का उच्चारण ठीक नहीं करता था, दूसरा कारण ये था कि सबको पता था ये अनपढ़ है, तो कई कहते थे ये देखो क्या दिखावा कर रहा है कि बड़ा पंडित बन गया पर है अनाड़ी। पर जब भी वो ब्राह्मण विचलित नहीं हुआ और गुरु का आदेश का पालन किया, तो चैतन्य महाप्रभु जी जब दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तो वो श्री रंग मंदिर में पहुंचे, उन्होंने देखा कि ब्राह्मण गीता के श्लोकों का उच्चारण करते हुए शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकट कर रहा है, शरीर रामोन शिवरिंग कंपन, शरीर कंपन हो रहा है, आंखों से नेत्र बह रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। तो महाप्रभु ने उनसे पूछा कि गीता में क्या है जिसके कारण तुम्हें शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकट कर रहे हो? तो इस ब्राह्मण ने पूरी कथा सुनाई किस प्रकार वो गुरु के आदेश का पालन कर रहा है हालांकि लोग हंसते हैं, और ब्राह्मण ने कहा कि जब मैं भगवान श्री कृष्ण के संदेश को पढ़ता हूं, उनके चेहरे को देखता हूं, तो फिर मेरे ये लक्षण प्रकट होते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जी ने उन्हें गले लगाकर कहा कि तुम गीता के असली संदेश को समझ गए हो। तो यहां एक उदाहरण है कि अनपढ़ ब्राह्मण गुरु के आदेश का पालन कर रहा था और अंत में उन्हें भगवान का दर्शन भी प्राप्त हुआ। तो अगर हम भी उसी प्रकार ये आदेश का पालन करें और गीता का रोज अध्ययन करें तो हमें भी असीम कृपा प्राप्त हो सकती है। तो ये है निवेदन आप सब भक्तों से। एक और संदेश था कि गीता जयंती के उपलक्ष हमारे इस्कॉन संस्था के जो भक्त हैं वो सारे विश्व में प्रयास करते हैं अधिक से अधिक मात्रा में गीता को आगे बांटने के लिए। भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? जो कि मेरा प्रचार करता है, उससे ज्यादा प्रिय ना कोई हुआ है ना होगा। तो जो भक्त इस संस्था से जुड़े हुए हैं कई सालों से, वो तो हर साल ही इस यज्ञ में साथ देते हैं। और हम क्यों प्रचार करते हैं गीता के जयंती के उपलक्ष्य, क्यों प्रयास करते हैं अधिक से अधिक मात्रा में गीता को बांटें, क्योंकि गीता के पढ़ने के माध्यम से आपका परिवर्तन होगा। आज सारे संसार में लोग जुड़ रहे हैं, एक कारण क्या है, प्रमुख कारण है शास्त्रों का संदेश। शास्त्रों में भगवान की वाणी है और शुद्ध भक्त की व्याख्या है। तो गीता के जयंती के उपलक्ष जो योजना की जा रही है ग्रंथों के वितरण की, उसका मेन कार्य यह है कि लोगों को सुखी बनाना। और लोग सुखी बन सकते हैं कैसे, इस संदेश के द्वारा। तो हमारी यह योजना रहती है हर साल कि हम अधिक से अधिक मात्रा में इन ग्रंथों को बांटें। आपको आपका अभ्यास होगा कि हिंदुस्तान में घर घर ईसाई लोग आकर बाइबल बांट रहे हैं, शायद आपके घर में भी आए होंगे। तो हम प्रयास करते हैं अनेक साधनों के द्वारा इन ग्रंथों का वितरण करने के लिए, घर घर जाते हैं, व्यापारियों को मिलते हैं और दुकानदारों को मिलते हैं, विनती करते हैं। ये जो गीता है ये दिव्य ज्ञान है पूरे मानव समाज के लिए, और हर व्यक्ति जो इस गीता का के वितरण में सहयोग दे उसे परम भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो मैं ये विनती करना चाहता था आप सबसे कि अगर आप सब भी इस योगदान में जुड़िए और आप सब भी प्रयास कीजिए भगवान के प्रिय भक्त बनने के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, तो भगवान आपको भी निमित्त मात्र बना सकते हैं बद जीवों का उद्धार करने के लिए। आज अगर मन की शांति चाहिए, विश्व की शांति चाहिए, तो एक ही उपाय है। जैसे कि मछली को अगर आप जल के बाहर रखोगे तो मछली किसी स्थिति में संतुष्ट नहीं रहेगी, उसी प्रकार आध्यात्मिकता के बिना कोई सुखी नहीं रह सकता। आज हिंदुस्तान में भी आप देख रहे हो कि भौतिकता इतनी फैल गई है और अशुद्ध धर्म में बहुत कम संख्या की प्रजा रुचि ले रही है। तो आज हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम इन बदजीवों को सुखी बनाएं। कैसे, ये दिव्य ज्ञान आगे पहुंचाकर। तो ये छोटा सा संदेश था कि अगर आप सभी इस सेवा में जुड़ सको तो बड़ी अच्छी बात है और आपको भी भगवान की असीम कृपा प्राप्त होगी। हरे कृष्णा। बैठिए बैठिए, अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ। तो आप में से भागवत गीता रोज कौन कौन पढ़ते हो, रोज पढ़ते हो, बड़ी अच्छी बात है। अगर मैं आपसे ये विनती करूं आप में से भागवत गीता यथारूप किस किस के पास है घर में, चाहे अंग्रेजी हो, हिंदी हो, किसी भाषा में। अच्छा, आप में से किन किन के पास भगवद गीता यथारूप की कॉपी नहीं है। सब 3, 4, 5, 10, 12 लोग। तो जिनके पास नहीं है वो प्राप्त कर सकते हैं चाहे तो, और लगभग सबके पास है। तो आपसे एक छोटी सी विनती है कि आप ये निर्णय कीजिएगा ये साल गीता जयंती के उपलक्ष्य कि आप रोज गीता पढ़ोगे। आप में से लगभग 50% लोगों ने तो हाथ उठाए और काम रोज भगवद गीता पढ़ते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। अगर आप सब जो नहीं भी पढ़ते गीता का एक श्लोक भी पढ़ो वो जो अनपढ़ ब्राह्मण जिसकी कथा हमने सुनाई वो तो पूरे 18 अध्यायों का उच्चारण कर रहा था। तो हम आपको इतना भारी बोझा नहीं देना चाहते, अगर आप 18 अध्याय नहीं पढ़ सकते कम से कम एक दो श्लोक तात्पर्य के साथ, ये नहीं कि केवल अनुवाद, ये पढ़ना आप शुरू कर दो और आप देखोगे कि गीता की संगत रखकर आपका जो दिव्य ज्ञान है वो बढ़ेगा। आपका भौतिक ज्ञान बढ़े, आपको भौतिक डिग्री मिले तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं? और सबको कहते हैं मुझे ये डिग्री मिल गई, ये मिला है ना। उसी प्रकार आज इस्कॉन में कई स्टडी प्रोग्राम्स हैं, जिनमें से एक है भक्ति शास्त्री प्रोग्राम, जिसमें आप जैसे भक्त शास्त्रों को पढ़ते हो और फिर डिग्री प्राप्त करते हो। तो यहाँ दिल्ली मंदिर में भी हमारी योजना है इस प्रोग्राम को थोड़े महीनों में शुरू करने के लिए, और अगर ये कार्यक्रम शुरू किया जाए तो शाम के समय क्लासेस होंगी हफ्ते में 2-3 दफा। अब आओ पढ़िए, फिर 4 महीने में 6 महीने में गीता का इम्तिहान लीजिए और डिग्री प्राप्त कीजिए। आप चाहोगे ऐसा कोर्स करना? कौन कौन चाहोगे कोर्स करना ऐसा? ओह वेरी गुड, अच्छा हाँ, अभी उसकी तैयारी हो रही है, मोहन रूपा प्रभु कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो अगला प्रश्न, आप में से हरे कृष्ण महामंत्र का जाप रोज कौन कौन करते हो? ओ लगभग सब, अच्छा। और आप में से कौन कौन रोज जाप नहीं करते? सिर्फ 1, 2, 3, 4 बस। और 16 माला का जाप रोज कौन कौन करते हो? और 8 माला से ज्यादा और 16 से कम? 8 और 16 के बीच में? सब 1, 2, 3, 4, 5 बस। और 1 माला और 8 माला के बीच में? तो जो 1 से 8 माला में हैं उनके साथ माला भी लाए हैं, वो प्रयास कर सकते हैं थोड़ा माला बढ़ा दें। जो 8 माला करते हैं वो प्रयास कर सकते हैं और आगे बढ़ें। तैयार हो आप? तैयार हो थोड़ा माला का जाप बढ़ाने के लिए? हाँ या ना? हाँ हाँ या ना? और गीता रोज पढ़ोगे? पिछले साल आप में से किन किन ने सहयोग दिया था ग्रंथों के वितरण में? अच्छा, कईयों ने दिया था। और इस साल कौन कौन जुड़ चुके हैं ग्रंथों के वितरण के सेवा में? आप लोग जुड़ चुके हो? हाँ, कौन कौन जहां हाथ ऊपर उठाए? अच्छा, तो मैं देख रहा हूं कई भाग्यशाली भक्त तो जुड़ चुके हैं पर कई भाग्यशाली भक्त नहीं जुड़ पाए हैं। तो जो नहीं जुड़ पाए हैं उनसे विनती है कि वो भी जुड़े। क्या विचार है? आप चाहते हो कि सिर्फ आपके पड़ोसी को भगवान की कृपा प्राप्त हो कि आपको भी? सच बोलिए। हाँ क्या, कौन नहीं मानता? अच्छा, किताब लेते नहीं है? अच्छा नहीं, तो मैं विनती करना चाहता था सब भक्तों से कि आप सब के सब, मेरे ख्याल से यहां 200-300 भक्त बैठे होंगे है ना, आप सब के सब इसमें से 100-150 तो जुड़े हुए हैं, उन्होंने हाथ उठाया, पिछले साल भी यह सेवा की थी और ये साल भी जुड़े हुए हैं। पर 100-150 भक्त है जो कि नहीं जुड़े हुए, तो मैं खास करके उनसे विनती करना चाहता हूं जो नहीं जुड़े कि वो भी थोड़ी जिम्मेदारी ले लें प्रयास करने के लिए। आखिर अब क्या कर रहे हो? भगवान का संदेश दे रहे हो आगे, है कि नहीं? अब अपने लिए तो कुछ नहीं कर रहे। हमारे चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु जी की लीलाओं का वर्णन है, तो उसमें एक कथा आती है कि जब चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने साथियों को कहा था कि घर घर जाकर प्रचार करने के लिए, तो भगवान नित्यनंदा जो कि भगवान के अवतार हैं बलराम जी के, वो भी जा रहे थे घर घर प्रचार करने के लिए। पर जब भगवान नित्यानंदा भी जा रहे थे बंगाल में प्रचार करने के लिए घर घर, सब लोगों ने उनका स्वागत नहीं किया। कईयों ने उनका स्वागत किया और कईयों ने कहा हे अंदर नहीं आ सकते, जाओ निकल जाओ, उनका अपमान भी किया, पर उन्होंने स्वीकार कर लिया। हमारे गुरु जी श्रील प्रभुपाद जी आपके दिल्ली शहर में धूप में जाते थे ग्रंथों का वितरण करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि दिल्ली वासी भारतवासी असली सुख शांति प्राप्त करें इस शिक्षा के आधार पर। तो जो भक्त जन हैं वो भगवान की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। भगवान की इच्छा क्या है? जिस शिक्षा का हम वर्णन कर रहे थे कि हम भगवान के शरणागत हों। तो अगर आप सब इस शुभ कार्य में जुड़ सकते हो तो बहुत ही अच्छा होगा। भगवान का संदेश तो फैलेगा, पर अगर आप सहयोग दोगे तो आपको भी भगवान की कृपा प्राप्त होगी, पर आप सहयोग नहीं दोगे तो कोई और किसी और को ये क्रेडिट मिल जाएगा। आप सब ये कृपा प्राप्त कीजिए। तैयार हो आप सब? सब तैयार हो? पक्का? तब मैं देखना चाहता हूं कि आप में से एक जो जो नहीं जुड़े हैं उनमें कौन कौन तैयार हैं केवल इस महीने के लिए गीता के वितरण में सहयोग देने के लिए। अच्छा, तो ये हैं जो नहीं तैयार थे। तो मैं आप भक्तों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मौन रूपा प्रभु टेंपल प्रेसिडेंट वहां खड़े हैं और शास्त्र ने और कौन नित्य किशोर और कौन जो भक्त नहीं जुड़े हैं और अब जुड़ने को तैयार हैं एक बार कृपा करके फिर से हाथ उठाइए ऊपर ऊपर। तो आप सब इधर इधर ये हैं नित्य किशोर प्रभु और शास्त्र नेत्र, ये हमारे कॉन्ग्रीगेशन डायरेक्टर हैं। तो इन दोनों को आप अपना नाम दोगे और आपको ये बताएंगे कैसे आपको 10-20 गीता दे सकते हैं। ज्यादा प्रयास कीजिए। कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है। तो कई बड़े प्रचारक हैं, कई छोटे, भगवान सबके प्रयास को स्वीकार करने को तैयार हैं। तो आप करोगे? आप सब इस महीने 1 घंटा रोज दीजिए प्रचार करने के लिए, और अगर ज्यादा समय दे सको तो वो भी दीजिए। आप कहोगे पर महाराज हमने तो कभी किया ही नहीं ऐसा कार्य, हमने तो कभी, हमारे में तो कोई शक्ति नहीं है। तो इस विषय में भगवान कहते हैं कि जो प्रयास करते हैं मेरी सेवा में जुड़ने के लिए, अगर उनमें कुछ कमी भी हो तो उस कमी को मैं क्या करता हूं? दूर कर देता हूं। तो अगर आप जुड़ सकते हो, लोगों को गीता का संदेश दे सकते हो, तो इस माध्यम से आपको भी भगवान की असीम कृपा प्राप्त होगी और आप भी भगवान के क्या बनोगे? प्रिय भक्त। भगवान ने कहा जो मेरा प्रचार करता है उससे ज्यादा प्रिय ना कोई कभी हुआ है ना होगा। तो भगवान जब कह रहे हैं हम क्यों नहीं विश्वास करें, है ना? ये तो गीता में है। तो अगर आपको थोड़ा अपमान भी सहना पड़ जाए भगवान के प्रचार के लिए, उसमें क्या? पैसे कमाने के लिए आपको 10 आदमियों को सलाम नहीं करना पड़ता, दफ्तर में सबको नमस्ते बोलना पड़ता है। तो ये तो भगवान का प्रचार है। तो आप सब जुड़िए इसमें। ओके, तो आप सब नाम दोगे इन्हें? किसी का प्रश्न है किसी प्रकार का? एक और विनती थी कि आप सब हर रविवार को आइए। प्रभुपाद जी ने ये रविवार के कार्यक्रम की योजना बनाई थी आप जैसे भक्तों के लिए। जब प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था की स्थापना की न्यूयॉर्क में, तो उस समय कई लोग नौकरी कर रहे थे, धंधा कर रहे थे और दिन में उनको टाइम नहीं होता था आने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने रविवार के कार्यक्रम की स्थापना की जिसमें आप सब जो व्यस्त हो इतवार को आ सकते हो। तो इतवार वाले दिन और कोई अपॉइंटमेंट मत रखो, कोई निमंत्रण मिले दे रहा है तो आप बोलो इतवार का मेरा फिक्स निमंत्रण है राधा पार्वती शादी का दर्शन। तो आप इस प्रकार से दृढ़ होकर भगवान की इस प्रकार दृढ़ होकर आप सेवा में जुड़ोगे तो भगवान देखेंगे हाँ मेरे लिए देखो ये भक्त कुर्बानी कर रहे है ना। नहीं तो ऐसे सोचोगे जब किधर नहीं है जाने के लिए तो हम मंदिर चले जाएंगे तो भगवान भी देखेंगे ये इस भक्त में कोई त्याग की भावना नहीं है। पर जब भगवान देखे नहीं दृढ़ होकर ये मेरे मंदिर आता है हर रविवार को तो भगवान आपसे भी प्रसन्न हो गए है कि नहीं। तो अब गीता के संदेश का अध्ययन कीजिए ओके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।